दृढ़ता और साहस। प्रेम मार्ग के अत्यंत धीर पथिक घनानंद ने वियोग के अंतर्गत दैन्य, विवशता, निर्वलंबता आदि करुणोत्पादक मनोदशाओं का समावेश करते हुए भी एक अपूर्व दृढ़ता और साहस का परिचय दिया है। वस्तुतः इनके यहाँ प्रेमोन्माद में प्रेमी इस बात की परवाह ही नहीं करता कि प्रिय भी उसे प्रेम करता है या नहीं। इसलिए घनानंद के काव्य में आत्मदान की भावना अत्यंत प्रबल है, जो प्रेम को साहसिक पथों की ओर अग्रसर करती है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीत रीत विषम सु रोम रोम रमी है। वस्तुतः लोक और शास्त्र दोनों ही दृष्टियों से इस प्रकार के विषम प्रेम को उचित नहीं माना गया है, लेकिन इन बंधनों का उल्लंघन कर घनानंद का प्रेमी अपना प्रेम आदर्श स्थापित करता है। वेदना और पीड़ा के कसक से उसका रोम रोम भरा है, उसके प्रत्येक उच्छ्वास से निराशा का हाहाकार सुनाई पड़ता है, लेकिन इस साधना मार्ग से उसमें कहीं भी विचलन नहीं दिखाई देता। निराशा प्रकारांतर से दृढ़ता प्रदान करती हुई उसे कठोर साधना में प्रवृत्त कर देती है। आशा गुण बंधिक भरोसो सील धरी छाती, पूरे पन सिंधुमय न बूढ़त सकाहियाओ, दुख दैव ही जारी अंतर उदेग आँच, रोम रोम त्रासने निरंतर तचाई हाँ, लाख लाख भातिन की दुसह दशानी जानी, साहस सहार सिर आरे लो चलाया हों। ऐसे घन आनंद गही है टेक मन माही, अरे निर्दयी तो ही दया उपजाया हों। इस कवित्व में वीरवाणी की ओर से परम साहस दृढ़ निश्चय का परिचय दिया गया है। सूफी साधना से प्रभावित फारसी प्रेम पद्धति की एक स्वस्थ झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है। अत्यंत निर्दय प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए उसकी आंखों के सामने डूब मरने या विरह वेदना की यंत्रणा झेलते हुए अपने को मिटा देने का दृढ़ निश्चय फारसी प्रेम पद्धति का आदर्श है। यदि प्रेमी को यह विश्वास हो जाए कि उसके मृत्यु के बाद प्रिय की आंखों में आंसू की दो बूंद या जीवा पर सहानुभूति के दो शब्द आ जाएंगे, तो वह प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हो जाता है। यहाँ विरहड़ी आशारूपी रस्सी से भरोसे रूपी शीला को छाती पर बांध कर प्रेम के प्रतिज्ञा रूपी समुद्र में डूबने के लिए निर्भय होकर व्रत लेती है। यही नहीं, वरन दुख की दावाग्नि में हृदय को जलाकर आंतरिक व्यथा की त्रासदायक आँच में अपने संपूर्ण शरीर को निरंतर तपाने का निश्चय भी करती है। लाख लाख भांति की विरह दशाओं को अच्छी तरह समझकर उन्हें साहसपूर्वक झेलना कुछ वैसा ही है जैसे अनेक साधना पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म के साक्षात्कार का प्रयास। प्रेम और भक्ति दोनों ही क्षेत्रों के लिए यह साधना फारसी साहित्य की देन है। रीतिकाल के अन्य कवियों पर फारसी साहित्य का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन उसके विषय या एकतरफा प्रेम की गंभीरता की वास्तविक अभिव्यक्ति घनानंद में ही मिलती है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा एरे निर्दयी तो ही दया उपजाय हों लौकिक श्रृंगार के चितेरों में सिर्फ घनानंद की ही विशेषता है। वीरहणीय प्रिय के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत करते हुए कहती है, मौन हो सो देखी हों कि तेगपन पाली हों, जो कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, रोई दिए रहोंगे कहाँ लो महराइबो की, कब हों तुम मरिय पुकार कान खोली हैं। वेदना की शक्ति पर इतना दृढ़ विश्वास हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में दुर्लभ है। कभी न कभी तो मेरी वेदना विह्वल पुकार तुम्हारे बहरे कानों को खोलेगी ही, इस प्रकार के दृढ़ता विरही की एक निश्चितता के कारण है। प्रिय की करुणा दृष्टि न भी मिले तो विरहणी अपने साधना पथ से विचलित नहीं होती। वह प्रिय के सम्मुख एक दूसरी ही चुनौती प्रस्तुत कर देती है। तुम दीन पीठ दीठ की नि सन्मुख याने, तुम पैंड परे राख रहियो या प्राण को, और सब ऐसा हो कछु कहो न कहा है बस, तुम्हें बदौ तो पै जाओ बर जी राखो ध्यान को। यहाँ प्रिय के ध्यान को ही विरहणी अपनी शक्ति और अमूल्य निधि मानकर चलती है, क्योंकि प्रिय के विमुख हो जाने पर वह उसकी ओर और अधिक उन्मुख हो जाता है। प्रिय क्षणों के प्राणों के पीछे पड़ा है, अर्थात उसको प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन ध्यान उसकी रक्षा में लगा हुआ है। तात्पर्य है कि प्रिय के ध्यान ने ही विरहणी को जिंदा रखा है। अंत में वह कहती है कि मैं बिना कहे सब कुछ सहन कर रही हूँ, क्योंकि इस पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन तुम्हें तब जानूं जब तुम मेरे ध्यान को भी रोक लो। इससे स्पष्ट है कि वीरानी के पास केवल प्रिय की यादें ही रह गई हैं। इन यादों की रक्षा के लिए वह भयंकरतम विष के घमन को चूर करने वाले विरह दशा का निरंतर पान करते हुए अपने प्राणों को शरीर के अंदर घोट रही है। प्रेम के रण क्षेत्र की धूल में अपनी सांस को चूर चूर कर साहसपूर्वक उद्विग्नता के विषाक्त बाणों को अपने सीने पर झेल रही है। अंत में वह अपने प्राणों को सांत्वना देते हुए कहती है कि इतना करने पर भी यदि प्रिय अनुकूल नहीं होते तो तुम भूलकर भी इसके लिए पश्चाताप मत करो, क्योंकि विधाता ने तुम्हारे हिस्से अंगारों पर लेटना ही लिखा है। इससे स्पष्ट है कि घनानंद ने भी रानी के धैर्य और निर्वलम्बता का चित्रण करते हुए भी उसमें अपूर्व साहस और दृढ़ता का समावेश किया है। वस्तुतः इस साहसिकता का मूलाधार कवि का विशेष प्रेमादर्श या उसके प्रेम संबंधी यह मान्यता है। चंद ही चकोर करें सो ससी देह धरे, मन साहू रहे एक देखबो को रहे द्वय, ज्ञान होते आगे जागी पदवी परम ऊंची, रस उपजावेता में भीगी भोग जात गुए। जान घन आनंदनों के यह प्रेम पंथ, भूले ते चलत रहे सुधी के थकित हुए। गौरव जिन मानो जानो न जानो कछु सीख ले हूँ, रसना के छाले पर प्यारे नेह नाव छमे। यहाँ कवि ने प्रेम साधना को ज्ञान योग या भक्ति से भी उच्च स्थान दिया है। यह चंद्रमा को चकोर और चकोर को चंद्रमा के भांति स्थिति मला देता है। जिस प्रकार ज्ञान के चरम स्थिति में ज्ञाता और ज्ञेय या भक्त और भगवान की अद्वैतता स्थापित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम की चरमावस्था में प्रेमी और प्रिय का भी अद्वैत हो जाता है। प्रेमी और प्रिय की पूर्ण एकता की स्थिति से उत्पन्न आनंद में भोगियों की समूची भोग भावना तिरोहित हो जाती है। अपने इस रूप में घनानंद के यहाँ प्रेम साधना की उस भूमि पर पहुँच गया है जहाँ वासना पूर्णतः तिरोहित हो गई है। प्रेम के इस अनोखे पथ पर आत्मविस्मृति में चलकर ही सफलता मिल सकती है। सतर्क होकर चलने वाला हार मानकर बैठ जाता है। अतः विषम होने के बावजूद भी घनानंद के यहाँ प्रेम में अंततः एक समता की स्थिति मिलती है जो सूफी प्रेम के अधिक निकट प्रतीत होती है। यहाँ प्रेम एक ऐसा साधना मार्ग बन गया है जो निरंतर साधन से साध्य बनता गया है। इस अहेतुकता के कारण प्रेम या उसकी पीड़ा ही प्रेमी के लिए प्रिय की अमूल्य थांति बन जाती है। कौन कौन बात को परेखे उर आनीय हो, जान प्यारे कैसे विधि अंक टारियत है। थांति लौती हारे प्रीति छाती पे विराजी रही, हेरी हेरी आसुन समूह ढारियत है। प्रिय की उपेक्षा और उसकी निष्ठुरता को विधाता का अंक या भाग्य का लेखा मानकर विरहणी अपने मन से असंतोष और सभी प्रकार के पछतावों को निकालकर प्रेम की पीर को प्रिय की मूल्यवान धरोहर के रूप में हृदय में संजय हुए हैं। उसके नेत्र इसे देखकर वे वलतापूर्वक अश्रुने छावर करते रहते हैं। एक तरफा प्रेम के संदर्भ में इस प्रकार की तल्लीनता और अंतरंगता प्रकारांतर से विरही की दृढ़ता और साहस के ही सूचक हैं। 6. वियोग में प्रकृति तथा अन्य बाह्य व्यापार। वियोग वर्णन में अपने समय के अन्य कवियों की भांति घनानंद ने भी वर्षा, मेघ, चांद, चांदनी, अंधेरी रात, फाल्गुन, बसंत, होली आदि प्राकृतिक उपकरण एवं सामाजिक अवसरों का सहारा लिया है। संयोग काल में ये उपकरण जिस प्रकार सुखात्मक अनुभूति में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार वियोग काल में दुखात्मक अनुभूति को भी उद्दीप्त करते हैं। घनानंद ने भी इनका उपयोग प्राय उद्दीपन के रूप में ही किया है, लेकिन प्रकृति के रीतिबद्ध स्वरूप का परित्याग कर कवि ने उसके साथ एक गहरी आत्मीयता भी व्यक्त की है। इसे समुचित रूप से समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। इरे वीर पौन तेरो सबय और गौन, बारी तोसो और कौन, मने ढरकौ ही बाणी दय। जगत के प्राण ओछे पड़े को समान, घन आनंद निधान सुखदान दुखी आनी दय। जानो जियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब हों अमोहि बैठे पीछे पहचान दय। बिरह बिथाही भूरी आखिन में राख्यों पूरी, धुरी तिनी पायन की हाहा नेकु आनी दय। रीतिबद्ध कवियों की भांति घनानंद ने वियोग वर्णन में दूत द्वितीया संदेशवाहक आदि की मध्यस्थता की व्यवस्था प्राय नहीं की है, लेकिन उक्त उदाहरण में विरहणी ने वायु से अपनी व्यथा का निवेदन करते हुए प्रिय के चरणों की धूल लाने का अनुरोध किया है। वस्तुतः पवन दूत और मेघदूत की परंपरा भारतीय साहित्य में पर्याप्त प्राचीन काल से रही है। इससे जहां एक ओर व्यापक प्रकृति के साथ विरही के हृदय का तादात्म्य सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर कवि की रीति मुक्तता का भी आभास मिलता है। वायु के सर्वत्र प्रसरणशीलता और उसके समतावादी लोकहितकारी स्वरूप का स्मरण कराते हुए विरहणी अपने अत्यंत रूपवान प्रिय की विमुक्तता से भी परिचित कराती है। प्रिय के मन में उपेक्षा भाव है, अतः उसके पास कोई संदेश न भेजकर वह वायु से केवल इतना ही अनुरोध करती है कि मेरी विरह वेदना को दूर कराने में संजीवनी बूटी का सा असर रखने वाले प्रिय चरणों की थोड़ी सी धूल बहला दे। प्रिय की चरण रज को आंखों में अंजन की तरह लगाकर संतोष कर लेना उसके प्रेम की अहेतुकता का संकेतक है। मेघदूत के संदर्भ में भी कवि ने कुछ इसी प्रकार की भावना को प्रकट किया है। पर का चहि देह को धार फिरऊ परजन्य जथारत वहीं दर्शऊ निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसौ घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरी पीर ही परसौ कबहूँ वा विशास सुजान की आंगन मो असुवान हूँ लय बरसौ। रानी बादल को दैत्य कर्म के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि तुम दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण कर अपने परजन्य नाम को सार्थक करती हो, अतः मेरे लिए भी तुम अपने इस नाम को सार्थक करो। समुद्र के खारे जल को अमृत के समान करते हुए भी तुम सभी प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय देते हो। सारे संसार को तुम जीवन दान करने वाले हो, अतः मेरी पीड़ा को भी अपने हृदय में अनुभव करो। यदि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस विश्वास घाती प्रिय के आंगन में कभी अवसर देखकर मेरी आंसुओं की वृष्टि करो, अर्थात मेरी वेदना को उस तक पहुँचाओ। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार तुम यहाँ घिर कर बड़े हृदय में व्यथा की वृद्धि करते हो, उसी प्रकार प्रिय के देश में भी घिर कर उसके हृदय में मेरे प्रति वेदना उत्पन्न करो। इस प्रकार के सहज निवेदनों के अतिरिक्त घनानंद ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में भी चित्रण किया है। अपने इस रूप में वायु और बादल वीरानी की व्यथा को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पावन नहीं छिया देह दैया महादुखी देही गए वही घन आनंद जो जीवन को देत तिन्ही को नाम मारने के मारव रहेंगौ। वियोग में संयोग काल के सुखोद्दीपक प्राकृतिक उपकरण यथावर्धक हो जाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में मिलन सुख से उत्पन्न श्रम स्वेद के समय शीतलता प्रदान करने वाली वायु अभिविरह काल में शरीर को छूती तक नहीं और यदि छूती है तो महादुखिया को जलाकर निकल जाती है। संयोग काल में शरीर को नवजीवन प्रदान करने वाले बादल अभिरह व्यथा से मरे हुए के लिए मारने वाले बन गए हैं। इस प्रकार प्रकृति के सारे उपकरण संयोग काल की अपनी प्रकृति को वियोग काल में पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। चांदनी से संबंध एक उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। नेह निधान सुजान समीपतो सीचत ही हियरा सियराई सोई किधो अब और भई दई हे रत ही मति जति हिराई है विपरीत महाघन आनंद अंबर ते धर को झर आई जारति अंग अनंग की आंचनी जून नहीं सुनई अगिलाई। चांदनी के प्रभाव वैश्व में से चकित वीरहणी की वेदना को कवि ने यहाँ अत्यंत कौशल के साथ प्रस्तुत किया है। चांदनी को देखकर वह कह रही है कि प्रेम की आगार प्रिय सुजान के निकट रहने पर तो यह हृदय को सींच कर शीतल करती थी। समझ में नहीं आता कि अब वह पहले वाली चांदनी है या कोई दूसरी हो गई है। इस संबंध में सबसे विचित्र बात तो यह है कि आकाश से आग की लपटें पृथ्वी की ओर आ रही हैं, जबकि लपटों की विशेषता यह है कि वे नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। ये लपटे काम वेदना की ज्वाला से सभी अंगों को जला रही हैं। लगता है कि यह चादरी नहीं वरन कोई नए प्रकार का अग्निदाह है। वस्तुतः घनानंद यहाँ जहाँ बाह्य उपकरणों का सहारा लेने लगते हैं वहाँ अभिव्यक्ति की मार्मिकता में प्रायः बाधा पड़ती है। यहाँ चांदनी के प्रभाव वैश्व में पर अधिक दृष्टि होने के कारण वीरानी की वेदना पूरी तरह उद्घाटित नहीं हो पाती, लेकिन इस तरह के बाह्य निरूपक चित्र इनके काव्य में बहुत ही कम मिलेंगे। होली बसंत पावस आदि प्रसंगों में कवि ने वीरहणी की व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से फागुन का एक उदाहरण लिया जा सकता है। सोधे की बांस उसाहे रोकती चंदन दाहक गाहक जी को नैनन बैर सुहरि गुलाल अबीर उड़ावत धीरज ही को राग विराग धमार त्यों धारसी लोटी पर यो ढंग यो सुबही को रंगर चावन जान बिना घन आनंद लागत फागुन फीको। फागुन महीने में आने वाली होली एक अत्यंत रंगीन और उत्साहवर्धक त्यौहार है, लेकिन विरहणियों के लिए यह अत्यंत मारक बन जाता है। यहाँ विरहणी के लिए होली के अवसर पर प्रयुक्त होने वाली सुगंधियाँ दमघोटू और चंदन आदि शीतल पदार्थों का लेप प्राणों को दग्ध करने वाला सिद्ध हो रहा है। वातावरण में उमड़ता हुआ गुलाल उसके नेत्रों के लिए कष्टकर शत्रु और हवा में उड़ता हुआ अबीर उसके धैर्य को उड़ाने वाला साबित हो रहा है। निम्नलिखित विभिन्न राग रागिनियों में गाए जाने वाले गीत उसे वैराग्य उत्पन्न करने वाले और धमार उसके हृदय पर तलवार की धार जैसी चोट करने वाला सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार होली के रंगीन उत्सव पर होने वाली सारी उत्साहवर्धक क्रियाओं का भी प्रभाव उल्टा हो गया है। आनंद की रचना करने वाले प्रिय सुजान के बिना वीरहणी के लिए फाल्गुन फीका और अत्यंत उदासी का वातावरण उपस्थित करता है। घनानंद ने होली के इस प्रकार के हृदय विदारक अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। होली में कन्हैया बनने वाले बहादुर शाह रंगीली के राज दरबार का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपनी अहिकता परक या लौकिक श्रृंगार की रचनाओं में घनानंद ने इस अवसर को प्राय वियोग से संबद्ध करके देखा है। इनके भक्तिपरक पदों में भी होली का सर्वाधिक चित्रण है, लेकिन वहाँ इस अवसर को प्राय राधा कृष्ण के संयोग के साथ संबद्ध किया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। हो उनके रंग वे रंगे मेरे रंग भीच रीछनि माचे रस होरी है। भली भई फागुन की दीनने में उघारी पर हित चोरी है। प्रीति रीति कीतनि गावत ब्रज घन घन केसरी घोरी है। आनंद घन राधिका दामनी जगत उजागर जोरी है। पदावली के अधिकांश पदों में इसी प्रकार की किरणापरकता मिलेगी, लेकिन सुजान हित में इस पर्व को व्यथावर्धक रूप में ही कवि ने चित्रित किया है। फागुन महीना की नहीं ना परे बाते दिन राते जैसे बीतत सुने तो डर घोर को उठे तान गाय प्राण बाण बैठी जाए। हाय चित बीच पर न पाऊ चित चोर को मची है चूहल चहू और चोप चाचरी सो कासो कहूँ सहू हों वियोग झक झोर को मेरो मन आली व विसानी बन माली बिन बाबरे लो दौरी दौरी परे सब और को। फाल्गुन महीने में निरंतर बजने वाले डफ के भयंकर आवाज सुनकर बिरहणी जिस यातना में अपना समय काट रही है उसे कहा नहीं जा सकता। इस महीने में गाए जाने वाले गीतों की एक एक तान उसके हृदय में बाण की तरह प्रविष्ट होकर पीड़ा पहुंचाती है। चाचर की उमंग से भरकर समूचे विनोदपूर्ण वातावरण में विरह द्वारा जिस प्रकार ढिंढोड़ी जा रही है उस यंत्रणा को बिना कहे मौन भाव से सहन कर रही है। विश्वासघाती प्रिय के अभाव में उसका मन पागलों की तरह चारों ओर दौड़ता फिर रहा है। फागुन मास और उसे पड़ने वाली होली के त्यौहार के साथ ही बसंत को भी घनानंद ने विरहोद्दीपक के रूप में चित्रित किया है। रतिराज का सहायक होने के नाते ऋतुराज विरहणी के लिए अत्यंत मारक सिद्ध हो रहा है। बासर बसंत के अनंत वहीं के अंत लेत ऐसे दिन पारे जो निहारे जिये राती हैं। लतन ही फूल तमालनी पझुलनी को हेरी हेरी नई नई भांति पिया राती हैं। प्यारे घनानंद सुजान सुन बालदास चंदन पवन में पजरी सियारती हैं। अवसर समारोह न तो अनयावक संग दूरी देश आई बाई को प्यारी नियराती हैं। यहाँ नायिका के विषय में स्थिति का द्वितीय द्वारा प्रिय से निवेदन किया गया है। वह कह रही है कि बसंत के दिन अंतहीन होकर विरहणी को मारे डाल रहे हैं। उसके लिए इन्होंने ऐसी घड़ी उपस्थित कर दी है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। लताओं का फूलना और मस्ती के साथ तमाल वृक्षों के गले लगकर झूलना देखकर वह विचित्र ढंग से पीली पड़ जा रही है। शीतल मंद सुगंधित वायु में वह झुलस कर ठंडी पड़ने वाली है। समय रहते ही यदि आप उसे संभाल नहीं लेते तो उसकी कुशल नहीं है। आपके न आने के साथ वह पूरे देश के निकट पहुंचती जा रही है। यहाँ यह स्मरणीय है कि घनानंद ने संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों के चित्रण में द्वितीय या मध्यस्थ का सहारा प्राय नहीं लिया है, लेकिन इस प्रकार का विधान उन्होंने जहाँ भी किया है वहाँ रीतिबद्धता का आभास मिलने लगता है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि प्रकृति के संबंध में उनकी दृष्टि अधिक व्यापक है। फलस्वरूप उनके यहाँ प्रकृति मानवीय भावधारा से रंजित होकर प्रस्तुत हुई है। इसे समझने के लिए पावस का एक उदाहरण लिया जा सकता है। विकल विषाद भरे ताही की तरफ तकी दामनी हूँ लह की बह की यों जारियो करे जीवन अधारपन पूरति पुकारनि सो आरत पपीहा नित कूकनी करियो करे अस्थिर उदेग गति देखी के आनंद घन पौन बडरियो सो बन बीथनी ररियो करे बूंदन परति मेरे जान जान प्यारी तेरे विरही को हेरी मेघ आंसू नि झरियो करे। विरही की अंतर्मुखता और आत्मनिष्ठता समूचे प्राकृतिक व्यापार को उसकी वेदना से रंजित कर देती है। प्रकृति से इस प्रकार का तादात्म्य सूफी कवि जायसी के साथ ही सूरदास मीरा कबीर आदि सभी भक्त कवियों के यहाँ देखने को मिलेगा। रीतिबद्ध कवियों में इसका पर्याप्त अभाव दिखाई देता है। प्रस्तुत कवित्व में द्वितीय नायिका से उसके प्रेमी की व्यथा का निवेदन कर रही है। वह पावसकालीन समस्त प्राकृतिक क्रिया व्यापार का कारण विरही की व्यथा में दिखाकर नायिका के हृदय में दया उत्पन्न करना चाहती है। विरही की विषादपूर्ण स्थिति से द्रविभूत होकर बिजली का पागल होकर दहक उठना और अपने जीवनाधार प्रिय के प्रेम की प्रतिज्ञा से परिपूर्ण होकर उसकी पुकार को सुन अपीहे का करुणाविभूतित होकर क्रंदन करना व्यथा के सर्वग्रासी होने की मार्मिक अभिव्यक्ति है। विरही और अस्थिर और बेचैन स्थिति से व्याकुल होकर वायु का दिग्भ्रमित होना तथा वन और गलियों में भटकना इस व्यथा की मार्मिकता में और अधिक वृद्धि करता है। अंत में यह कथन कि अ प्यारे सुजान, ये बरसातें की बूंदें नहीं हैं, वरन तुम्हारे विरही की व्यथा से द्रवीभूत होकर बादलों ने अश्रु की झड़ी लगा रखी है। प्राकृतिक क्रिया व्यापार में इस प्रकार की सहानुभूति प्रकृति के साथ मानव के चिर साहचर्य का संकेतक है। वह अपने सुख और दुख में प्रकृति को अपने सबसे निकट पाता है। प्रस्तुत उदाहरण में भी कवि ने मध्यस्थ के रूप में द्युति का विधान किया है, लेकिन परंपरा का यहाँ निर्जीव रूढ़ी के रूप में अंधानुकरण नहीं किया गया है। प्राकृतिक व्यापारों में इस प्रकार की सहानुभूति प्रदर्शन के साथ ही कवि ने उनमें शत्रुभाव का भी समावेश किया है। कोकिल, मोर, पपीहा, बादल आदि की आवाज विरहणी की वेदना के लिए कटे पर नमक का कार्य करती प्रतीत होती है। कार्य कुर कोकिला कहाँ को वैर काढ़त रही, कूकी कूकी अवही करे जो किन कोरी लय, पेड़े परे पापी ये कलापी निश द्यों से ज्यों ही चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फेरी लय, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जाने के अकेली सब घेरो दल जोरी लय, जलों करे आवत विनोद बर सावन वे तलो रे डरारे बजरारे घन घोरी लय। इसमें नाम परिगणना प्रणाली और रीतिबद्धता का आभास अवश्य मिलता है, लेकिन आत्मनिवेदन के रूप में विरहणी द्वारा कोकिल, मोर, चातक, बादल आदि के लिए प्रयुक्त आक्रोश सूचक वर विशेषण सारे वर्णन में एक व्यक्तिनिष्ठ स्पर्श ला देते हैं, अतः इसे नितांत रीतिबद्ध एवं घिसा पिटा वर्णन नहीं कह सकते। इसी प्रकार सावन, माघ, ग्रीष्म, वसंत आदि महीनों, ऋतुओं तथा अन्य प्राकृतिक उपकरणों और दृश्यों के माध्यम से गणानंद ने विरह व्यथा की मार्मिकता को सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति दी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि गणानंद की विरह भावना वेदना की विलासपूर्ण कल्पना न होकर अधिकांशतः अपने निजी जीवनानुभवों पर आधारित है, इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार की सहजता और हृदय स्पर्शिता मिलती है। गहन चिंताजन आत्मनिवेदन और निजी अनुभव संदर्भ इनके वियोग वर्णन को मात्र वर्णन न रहने देकर आत्माभिव्यक्ति का दर्जा देते हैं, अतः इनकी वेदना पाठक को अपना सहभागी बनाती है। यह विशेषता इन्हें अपने युग के अधिकांश कवियों से भिन्नता प्रदान करती है।